अध्याय 46 मसीही शिक्षा। हम शीघ्रता से इस दुनिया के इतिहास की अंतिम सूक्ष्म घड़ी के निकट पहुंच रहे हैं, तो यह बात महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि हमारे स्कूलों द्वारा दिए गए शिक्षा संबंधी अवसरों को सांसारिक स्कूलों द्वारा दिए गए अवसरों से भिन्न होना चाहिए। शिक्षा के प्रति हमारे विचार बहुत ही शुद्र तथा संकीर्ण हैं। इस ओर एक विस्तृत दृष्टिकोण तथा उच्च लक्ष्य की आवश्यकता है। वास्तविक शिक्षा का अर्थ एक विशेष पद्धति के अनुकरण से कहीं अधिक है। इसका अर्थ वर्तमान जीवन की तैयारी से भी अधिक है। इसका संबंध संपूर्ण व्यक्तित्व एवं संपूर्ण जीवन से है। इसका संबंध शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के समतुल विकास से है। यह शिक्षार्थी को इस दुनिया में और आने वाली दुनिया में विस्तृत रूप से आनंद के साथ सेवा करने के लिए तैयार करती है। यथार्थ में शिक्षा और त्राण का कार्य एक ही है, क्योंकि शिक्षा के कार्य में त्राण के कार्य की भांति जो नेव पड़ी है, अर्थात यीशु मसीह, उसे छोड़ के दूसरी नींव कोई नहीं डाल सकता। जीवन की सारी शिक्षा तथा अनुशासन का उच्च अभिप्राय यह है कि परमेश्वर की संगत में आकर मनुष्य की नैतिक प्रकृति का उत्थान हो, जिससे वह अपने सृजनहार के रूप को पुनः प्रतिबिंबित कर सकें। यह कार्य त्राणकर्ता की दृष्टि में ऐसा महत्वपूर्ण था कि उसको स्वर्ग के सिंहासन का परित्याग करना पड़ा और स्वयं इस पृथ्वी में आया कि मानव को आदर्श जीवन के योग्य बनना सिखलावे। सांसारिक योजनाओं, रीति रिवाजों तथा दस्तूरों में फंस जाना अति सरल है, और नूह के युग के लोगों की भांति इन गंभीर दिनों का जिनमें हम रहते हैं तथा उस विशाल कार्य को पूरा करने का हम तनिक भी ख्याल न करें। निरंतर खतरा लगा हुआ है कि हमारे शिक्षकगण भी यहूदियों की भांति वही भूल करें और उन प्रथाओं, व्यवहारों तथा परंपरागतों का अनुकरण करें जिनको परमेश्वर ने नहीं दिया है। कुछ लोग दृढ़ता के साथ पुरानी आदतों को पकड़े रहते हैं और भांति भांति के अनावश्यक अध्ययनों से प्रीति रखते हैं, मानो कि उन्हीं पर उनके त्राण का आधार है। ऐसा करने में वे उन्हें परमेश्वर के विशेष कार्य से दूर रखते हैं और शिक्षार्थियों को अपूर्ण तथा गलत शिक्षा देते हैं। ऐसे स्त्री पुरुष होने चाहिए जो मंडलियों में काम करने के तथा युवकों को विशेष काम के लिए शिक्षण देने के योग्य हों, जिसके द्वारा आत्माएं यीशु को जान सकें। हमारे द्वारा स्थापित पाठशालाओं का ध्येय यही हो, उनको दूसरी मंडली द्वारा स्थापित पाठशालाओं तथा सांसारिक सेमिनेरी तथा कॉलेजों के ढंग पर न होना चाहिए। इनको सर्वथा ऐसी उच्च कोटि का होना चाहिए जहां नास्तिकता के लेश मात्र की भी उत्पत्ति न हो और न उसका समर्थन ही किया जाए। विद्यार्थियों को व्यावहारिक मसीही धर्म की शिक्षा दी जाए और बाइबल का सर्वश्रेष्ठ सम्मान हो और उसको महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक स्वरूप ग्रहण किया जाए। कलीसिया का दायित्व।
रात्रि के दर्शन के समय मैं एक बड़ी मंडली के बीच उपस्थित थी, जहां पर शिक्षा का विषय श्रोताओं के दिमाग को व्याकुल कर रहा था। हमारा एक दीर्घकालीन शिक्षक भाषण दे रहा था। उसने कहा, शिक्षा का विषय ऐसा है जिससे संपूर्ण सेवंथ डे एडवेंटिस्ट जनता को दिलचस्पी रखनी चाहिए। कलीसिया का एक विशेष कार्य अपने बालकों को तालीम देने और उनका शिक्षण करने का है, ताकि वे किसी अन्य पाठशाला की शिक्षा से या किसी अन्य समाज में भ्रष्ट आदत वाले व्यक्तियों से प्रभावित न हों। संसार अधर्म से और परमेश्वर की आज्ञा भंग करने की भावनाओं से भरा हुआ है। नगर व कस्बे सदोम की भांति बन गए हैं और हमारे बालकों के सामने प्रतिदिन अनेक दुष्टाचार का खतरा बना रहता है। जो बालक सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, अक्सर उनका ऐसे बालकों से संबंध होता है जिनकी उनसे भी अधिक लापरवाही की जाती है, और जो पढ़ाई के कमरे में व्यतीत किए गए समय के अलावा गली कूचे में की शिक्षा प्राप्त करने को छोड़ दिए जाते हैं। बालकों के हृदय पर सरलता से प्रभाव पड़ जाता है। जब तक उनके अड़ोस पड़ोस यथोचित प्रकार के नहीं, तो शैतान इन उपेक्षित बालकों को सुशिक्षित बालकों पर प्रभाव डालने को उपयोग में लाएगा। इस प्रकार सब्बत मानने वाले माता पिता की जानकारी के पहले कि क्या क्या हो रहा है, दुष्टता के पाठ सीख लिए जाते और उनके बालकों की आत्माएं भ्रष्ट हो जाती हैं।
अनेक परिवार अपने बालकों की शिक्षा के निमित्त
उन स्थानों को स्थानांतर करते हैं जहां हमारे बड़े बड़े स्कूल स्थापित हैं। वे स्वामी के लिए अच्छी सेवा वहीं रहकर कर सकते हैं। उन्हें अपनी मंडली को प्रोत्साहन देना चाहिए कि एक चर्च स्कूल खोले जहां उस इलाके के बालक सर्व व्यावहारिक मसीही शिक्षा प्राप्त कर सकें। उनके बालकों के लिए और परमेश्वर के काम के लिए ही सुंदर होगा यदि वे उन छोटी मंडलियों के बीच में रहें जहां उनकी मदद की आवश्यकता है, बजाय इसके कि वे बड़ी बड़ी मंडलियों में जाएं जहां शायद उनकी इतनी आवश्यकता नहीं है और भय है कि वे आध्यात्मिक आलस्य के प्रलोभन में गिर जाएं। जहां कहीं भी थोड़े से सब्बत मानने वाले विश्वासी माता पिता को चाहिए कि एक स्थान का प्रबंध करें जहां उनके बालकों और युवकों को शिक्षा दी जा सके। उसको एक मसीही शिक्षक रखना चाहिए जो समर्पित मिशनरी की भांति बालकों को इस प्रकार की शिक्षा दे कि वे भी मिशनरी बन सकें। हम परमेश्वर से गंभीरता तथा पवित्रता के साथ प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि अपने बालकों का पालन पोषण परमेश्वर के लिए करें, न कि संसार के लिए। उनको शिक्षा दें कि वे अपना हाथ जगत के हाथ में न दें, किंतु परमेश्वर का भय मानें, इससे प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। उसके मन को इस विचार से प्रभावित करता है कि वे उनके सृजनहार के रूप में बनाए गए हैं और मसीह उनका नमूना है जिसके साचे में उन्हें ढलना है। उनकी शिक्षा पर परमोत्साह पूर्वक ध्यान देना चाहिए। उन्हें त्राण के विषय में ज्ञान प्राप्त हो और उनका जीवन तथा चरित्र ईश्वरीय सदृश्यता के साचे में ढल जाएं। कर्मचारियों की जरूरत को पूरा करने के हेतु परमेश्वर की इच्छा है कि विभिन्न देशों में शिक्षा केंद्र खोले जाएं, जहां होनहार विद्यार्थियों को ज्ञान की व्यावहारिक शाखाओं तथा बाइबल के सत्यों में तालीम दी जावे। इन व्यक्तियों के काम में संलग्न रहने से नए क्षेत्रों में वर्तमान सत्य की विशेषताओं का चित्रण होगा। हमारी पुरानी कॉन्फ्रेंसों से मिशनरी के रूप में भेजे जाने वाले व्यक्तियों की तालीम के अलावा विचित्र देशों में ऐसे व्यक्तियों का शिक्षण किया जाए जो अपने देशबंधुओं तथा पड़ोसियों के लिए स्वयं काम करें और जहां तक संभव हो उनके लिए अपने ही काम करने के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करना अच्छा और सुरक्षापूर्ण होगा। कर्मचारी की तथा काम की उन्नति के हेतु ये विचार सर्वदा उचित नहीं है कि वो शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश को जावे। मंडली के रूप में तथा व्यक्तिगत रूप में यदि हम न्याय के दिन निर्दोष ठहरना चाहें तो हमें युवकों के शिक्षणार्थ उदार चित्त से अधिक प्रयत्न करने चाहिए, ताकि वे इस विशाल कार्य की विभिन्न शाखाओं के लिए जो हमारे हाथों में सौंपा गया है कुशल रीति से सुयोग्य हो सकें। विद्वता के साथ प्रबंध करना चाहिए जिससे योग्य पुरुषों की तीक्ष्ण बुद्धि को मजबूत तथा विधिवत बनाया जा सके, ताकि मसीह के काम में ऐसे चतुर कर्मचारियों की त्रुटि के कारण बाधा ना पड़े जो अपने काम को उत्साह और ईमानदारी के साथ करते हैं। हमारे विद्यालयों को नैतिक सहयोग पर हो। माता पिता को शिक्षक के साथ सहयोग देना और अपने बालकों के हृदय परिवर्तन के लिए उत्साहपूर्वक कोशिश करना चाहिए। उनको परिवार के बीच आध्यात्मिक मनोरंजनों को जीवित रखने का उद्योग करना चाहिए और अपने बालकों का पोषण परमेश्वर की शिक्षा व सलाह के अनुसार करना चाहिए। उन्हें प्रतिदिन अपने बालकों के संग शिक्षार्थी के रूप में अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार से शिक्षा के घंटे को मनोरंजक व लाभदायक बना सकते हैं, जिससे अपने बालकों के त्राण की इस तरह की कोशिश में स्वयं उनका भरोसा बढ़े। कुछ विद्यार्थी जब घर लौटते हैं तो शिकायतें साथ ले जाते हैं और माता पिता तथा मंडली के सदस्य उनके एक पक्षीय अथवा बढ़ी चढ़ी बातों को कान लगाकर सुनते हैं। उनको विचार करना चाहिए कि प्रत्येक कहानी को दी तरफे होती हैं, परंतु वे इन झूठ सच खबरों का विश्वास करके अपने और कॉलेज के बीच एक दीवा खड़ी कर देते हैं। फिर वे कॉलेज की कार्यवाही के प्रति भय तथा संदेह व्यक्त करने लगते हैं। इस प्रकार का प्रभाव हानिकर होता है। अशांतिपूर्ण वचन स्पर्श रोग की भांति फैल जाते हैं, जिसका मस्तिष्क पर अमिट प्रभाव पड़ता है। जितनी बार ये बातें दोहराई जाएगी बढ़ती ही जाएगी, जबकि यह बढ़कर एक बड़ी कहानी बन जाएगी। परंतु जांच करने से मालूम हो जाएगा कि यथार्थ में शिक्षकों का कोई दोष नहीं था, वे पाठशाला के नियमों को प्रचलित करने में अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहे थे, जिनका करना जरूरी था, अन्यथा पाठशाला का आचार भ्रष्ट हो जाएगा।
यदि माता पिता अपने आप को शिक्षकों के स्थान में रखें और देखें कि किसी पाठशाला का, जिसमें हर श्रेणी व बुद्धि के सैकड़ों बालक पढ़ते हों, संबंध तथा अनुशासन करना कितना कठिन है, तो उनका विचार बिल्कुल भिन्न होगा। उनको सोचना चाहिए कि कुछ बालकों को घर पर कभी कोई ताड़ना नहीं हुई। जब तक ऐसे बालकों के लिए कुछ न किया जाए जिनकी लापरवाह माता पिताओं द्वारा उपेक्षा की गई है, मसीह उनको कभी ग्रहण नहीं करेगा। जब तक उन पर नियंत्रण का दबाव न डाला जाएगा, वे इस जीवन में बेकार रहेंगे और भविष्य के जीवन में उनका कोई भाग न होगा।
बहुत से माता पिता विश्वस्त शिक्षक के प्रयासों का असमर्थन करने में भूल करते हैं। युवा पुरुषों तथा बालकों में समझने की अपूर्ण क्षमता तथा अविकसित विवेक के कारण वे सर्वदा शिक्षक की योजनाओं तथा साधनों को समझने के अयोग्य रहते हैं। तो भी जब ये बालक जो कुछ पाठशाला में कहा गया अथवा किया गया उसकी खबर घर पर लाते हैं, तो उसकी पारिवारिक वृत्त में माता पिता द्वारा खुलकर आलोचना की जाती है। यहीं पर बालक ऐसे पाठ सीख लेते हैं जो सरलता से भूले नहीं जा सकते। जब कभी उन पर दबाव डाला जाता है जिसके वे अभ्यस्त नहीं हैं, या उनसे मेहनत के साथ अध्ययन करने को कहा जाता है, तो वे अपने अविवेकी माता पिता से सहानुभूति तथा लाड़ प्यार के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। इस प्रकार अशांत तथा असंतोष की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। समस्त पाठशाला को नैतिक पतन के प्रभाव से हानि उठानी पड़ती है और शिक्षक का भार और भी कठिन बन जाता है। परंतु सबसे भारी हानि उनको उठानी पड़ती है जो माता पिता के कुप्रबंध के शिकार बन रहे हैं। यथोचित शिक्षण द्वारा चरित्र में से जिन दोषों को पृथक हो जाना चाहिए था, वे उम्र के साथ पक्के हो जाते हैं और दोषयुक्त व्यक्तियों की उपयोगिता को नष्ट कर डालते हैं। शिक्षक परमेश्वर के अधीन है।
परमेश्वर प्रत्येक समर्पित शिक्षक के संग काम करता है। यदि शिक्षक इस बात को अनुभव करे तो इससे उसका स्वयं लाभ होगा। जो शिक्षक परमेश्वर के अनुशासन के अधीन रहते हैं, वे बालकों को प्रदान करने के हेतु पवित्र आत्मा द्वारा अनुग्रह, सत्य और प्रकाश प्राप्त करते हैं। उनको महसूस करना चाहिए कि वे महान जगतगुरु के अधीन हैं, तो उनके लिए निर्दयता की भावना, कर्कशवाणी, चिड़चिड़ापन का प्रदर्शन करना कितना अनुचित है। ऐसी स्थिति से वे अपनी त्रुटियों को अपने बालकों में बनाए रखते हैं। परमेश्वर अपनी आत्मा द्वारा स्वयं उस प्राणी से वार्तालाप करेगा। जब आप अध्ययन करें तो ऐसी प्रार्थना करिए, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। भजन संहिता 119 आयत 18। जब शिक्षक प्रार्थना में परमेश्वर पर अवलंबन करेगा तो परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आएगा और उसके द्वारा विद्यार्थी के मन में काम करेगा। पवित्र आत्मा हृदय को धैर्य और आशा और धर्म पुस्तक की भावनाओं से भर देगा जो विद्यार्थी को प्रदान की जाएगी। सत्य के वचन की महत्ता बढ़ेगी और उसका अर्थ ऐसा विस्तृत और संपूर्ण होगा जिसका उसको स्वप्न में भी ख्याल न हुआ था। परमेश्वर के वचन के सौंदर्य तथा पवित्रता का हृदय और चरित्र पर परिवर्तनशील प्रभाव पड़ेगा। स्वर्गीय प्रेम की चिंगारियां बालकों के हृदय पर प्रेरणा उत्पन्न करेंगी। यदि हम बालकों के लिए दिल से काम करेंगे तो हम सैकड़ों वरन हजारों बालकों को मसीह के पास ला सकते हैं।
यथार्थ में बुद्धिमान होने से पूर्व मनुष्यों को परमेश्वर पर अपनी निर्भरता स्वीकार करनी चाहिए, तभी वे उसकी बुद्धिमता से परिपूर्ण हो जाएंगे। परमेश्वर मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। संसार के अनुसार सबसे महान पुरुषों को, जिन्होंने विज्ञान की उच्च श्रेणी का चुंबन किया है, प्रियतम यूहन्ना अथवा प्रेरित पावल से तुलना नहीं की जा सकती। मानसिक तथा आत्मिक शक्तियां एक साथ हो जाती हैं तो मानवता को उच्च आदर्श प्राप्त होता है। जो लोग ऐसा होने देते हैं उनको मानसिक शिक्षण में अपने संग कार्य करने वाले जैसा स्वीकार करेगा। हमारी शिक्षा संबंधी संस्थाओं को इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम संसार के समक्ष परमेश्वर को सम्मान देने का उदाहरण उपस्थित करने का है।
मानवीय साधनों द्वारा पवित्र स्वर्गीय दूत काम की देखरेख करेंगे और प्रत्येक विभाग ईश्वरीय श्रेष्ठता की छाप लिए होगा। अध्यापक की योग्यताएं। अपने स्कूल के लिए एक मजबूत प्रिंसिपल तलाश कीजिए, ऐसा पुरुष जिसकी शारीरिक शक्ति अनुशासन के कार्य को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होगी। ऐसा पुरुष हो जो विद्यार्थियों को नीति नियम, सफाई तथा परिश्रम की आदतें सिखलाने की योग्यता रखती हो। जो कुछ आप करें उसको भलीभांति कीजिए। यदि आप साधारण शाखाओं में विश्वस्त हैं तो आपके बहुत से विद्यार्थी सीधे कैनवेसर तथा उपदेशक के काम में जा सकते हैं। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि सारे कर्मचारियों को उच्च कोटि की शिक्षा लेनी अनिवार्य है।
अध्यापकों के चुनाव में हर प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। जानना चाहिए कि यह इतना गंभीर मामला है जितना मंडली के अध्यक्ष के चुनाव का मामला। चतुर लोगों को जो चरित्र को भाप सकते हैं चुनाव करना चाहिए, क्योंकि योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है जो युवकों के मस्तिष्क को शिक्षा प्रदान कर सकें तथा साचे में ढाल सकें और उन विभिन्न को सफलता से चला सकें जिसको हमारी मंडली के स्कूलों में अध्यापक गण चला रहे हैं। बालकों के ऊपर युवा अनुभवहीन अध्यापकों को जिनमें शासन करने की योग्यता नहीं है ना लगाइए, क्योंकि उनकी कोशिशों से गड़बड़ उत्पन्न होगी। कोई अध्यापक नियुक्त नहीं करना चाहिए जब तक जांच परीक्षा से सिद्ध ना कर लिया गया है कि वह परमेश्वर से प्रेम रखता और उसको अप्रसन्न करने से डरता है। यदि अध्यापकों को परमेश्वर के बारे में शिक्षा दी गई, यदि उनके पाठ प्रतिदिन मसीह के स्कूल में सीखे जाते हैं तो वे मसीह के ढंग पर काम करेंगे। वे मसीह के संग बालकों को जीतेंगे और उन्हें उसकी ओर खींचेंगे, क्योंकि प्रत्येक बालक और युवक युवती बहुमूल्य हैं। अध्यापक की आदतों तथा सिद्धांतों को उसकी साहित्यिक योग्यताओं से अधिक महत्व देना चाहिए। यथोचित प्रभाव डालने के लिए उसको अपने स्वयं के ऊपर पूर्ण नियंत्रण होना जरूरी है और उसके हृदय में शिष्यों के लिए अत्यधिक प्रेम होना चाहिए, जो उसके मुख, वचन तथा कर्मों से दृष्टिगोचर होना चाहिए।
अध्यापक को अपना रवैया मसीही भद्र पुरुष की भांति रखना चाहिए। उसको अपने शिष्यों के समक्ष अपने को मित्र और परामर्शदाता स्वरूप दिखलाना चाहिए। यदि हमारे सब लोग, शिक्षक, धर्माध्यक्ष तथा अवैतनिक सदस्य, ले मेंबर, अपने में मसीही शिष्टाचार की भावना का उपार्जन करें तो वे शीघ्र ही लोगों के हृदयों में प्रवेश पाएंगे, कितने ही सत्य की जांच करके उसे ग्रहण करेंगे। जब प्रत्येक अध्यापक स्वयं को भूल जाएगा और अपने शिष्यों को सफलता और समृद्धता में दिलचस्पी लेने लगेगा और महसूस करेगा कि वे भी परमेश्वर की संपत्ति हैं और कि मुझे अपने प्रभाव के लिए जो उनके दिल और दिमाग व चरित्र पर पड़ा है हिसाब देना होगा, तब हमारे पास एक ऐसा उत्तम स्कूल होगा जिसमें स्वर्गदूत वास करना पसंद करेंगे। हमारी मंडली के स्कूलों, चर्च स्कूल में ऐसे अध्यापकों या अध्यापिकाओं की आवश्यकता है जिनके चरित्र उच्च कोटि के हों, जिन पर भरोसा किया जा सके, जिनका विश्वास ठोस है, जिनमें निपुणता और धीरज है, जो परमेश्वर के संग संग चलते हैं और बुराई की शक्ल से भागते हैं।
छोटे बालकों के ऊपर उसको नियुक्त करना जो घमंडी तथा कठोर हृदय है क्रूरता है। इस प्रकार का शिक्षक शीघ्रता से उन्नतिशील चरित्र वालों के लिए अत्यंत हानिकारक है। यदि अध्यापक परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं हैं, यदि वे उन बालकों को प्यार नहीं करते जो उनकी देखरेख में हैं, अथवा वे उनका पक्षपात करते हैं जो उनकी बड़ाई करते और उनकी उपेक्षा करते हैं जो इतने आकर्षक नहीं, अथवा उनकी ओर से लापरवाह हैं जो उतावले या चिड़चिड़े हैं, तो उनको नियुक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके काम का फल मसीह के लिए आत्माओं की हानि ही होगी। ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता है विशेषकर बालकों के लिए जो शांत दयालु हैं, जो उनकी ओर सहनशीलता और प्रेम प्रकट करते हैं, जिनको उनकी बहुत जरूरत है। यदि अध्यापक प्रार्थना की आवश्यकता को महसूस नहीं करता, तदनंतर अपने हृदय को परमेश्वर के समक्ष नम्र नहीं करता, तो वह शिक्षा के सार को खो बैठेगा।
अध्यापक की शारीरिक योग्यता के महत्व की अतिशय उक्ति नहीं की जा सकती।
क्योंकि जितना अच्छा उसका स्वास्थ्य होगा उतना ही सफल उसकी कोशिशें होंगी। जब शारीरिक शक्तियां अशक्तता अथवा रोग के परिणाम स्वरूप पीड़ित रहती हैं तो मस्तिष्क ना तो सोचने के लिए साफ ना कार्य करने के लिए मजबूत होगा। हृदय पर मन के द्वारा प्रभाव पड़ता है, परंतु यदि शारीरिक निर्बलता के कारण मस्तिष्क अपनी शक्ति खो बैठे तो उसी हद तक ज्ञानेंद्रियों और इच्छाओं का द्वार बंद हो जाता है और अध्यापक सत्य व असत्य के बीच फर्क करने में अयोग्य रहता है। जब कोई अस्वस्थता के कारण दुखी है तो धीरजवान और प्रसन्नचित होना कठिन है, अथवा ईमानदारी तथा न्यायानुसार कार्य करना सरल कार्य नहीं है। मसीही शिक्षा में बाइबल का स्थान। मानसिक शिक्षण के लिए बाइबल किसी अन्य पुस्तक अथवा पुस्तकों के संग्रह की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली पुस्तक है। उसके विषयों की गुरुता, उसकी उक्तियों की शानदार सरलता सादगी, उसके वाक्यालंकार मानसिक चित्रकारी का सौंदर्य, विचारधारा का उत्थान करता तथा उसमें नई जान डाल देता है। प्रकाशित वचन के विस्मयजनक सत्य को ग्रहण करने से इतनी मानसिक शक्ति प्राप्त होती है जितनी किसी अन्य ग्रंथ के अध्ययन से प्राप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार जब मस्तिष्क का संपर्क परमेश्वर के विचारों से होता है तो वह फैलता और मजबूत हो जाता है। बाइबल की शक्ति आध्यात्मिक प्रकृति का विकास करने में और भी शक्तिमान है। मनुष्य जो परमेश्वर के साथ सत्संग रखने को पैदा किया गया है, ऐसी मित्रता में अपना जीवन और विकास प्राप्त कर सकता है। परमेश्वर ही में आनंद प्राप्त करने के निमित्त पैदा किए जाने पर वो किसी और पदार्थ में हृदय की उत्कंठाओं की तृप्ति तथा आत्मा की भूख प्यास की संतुष्टता नहीं पा सकता। जो सच्चे और शिक्षणीय हृदय से परमेश्वर का वचन सीखता है और उसके सत्य को समझने की चेष्टा करता है, वो उसके ग्रंथकर्ता के संपर्क में लाया जाएगा, जिससे उसकी क्रमोन्नति की संभावना की कोई सीमा न रहेगी। यदि वो अपनी ही इच्छानुसार न चले तो धर्म पुस्तक से पाठ संबंधित जरूरी वाक्यों को कर्तव्य की बात नहीं परंतु गौरव की बात समझकर कंठाग्र कर लेना चाहिए। यद्यपि शुरू में स्मरण शक्ति दूषित प्रतीत हो, फिर भी वो अभ्यास द्वारा बलवंत हो जाएगी, ऐसा कि कुछ समय पश्चात आप सत्य के वचनों को यों संचय करने में आनंद लेंगे और ये आदत आध्यात्मिक वृद्धि के लिए उपयुक्त सिद्ध होगी। छोटी उम्र में बालकों को स्कूल भेजने का खतरा। जिस तरह एदेन निवासियों ने प्रकृति से पाठ सीखे, जिस तरह मूसा ने परमेश्वर का हस्तलेख अरब देश के पहाड़ियों और मैदानों में और बालक यीशु ने नासरत की पहाड़ियों में देखा, उसी प्रकार इस युग के बालक भी परमेश्वर के विषय में सीख सकते हैं। अदृश्य परमेश्वर दृश्य पदार्थों द्वारा प्रदर्शित होता है। जहां तक संभव है बालकों को उसके आरंभिक वर्षों ही से ऐसे स्थान में रखा जाए जहां ये अद्भुत पाठ्य पुस्तक उसके सामने खुली हो। अपने बालकों को छोटी अवस्था में दूर स्कूल को न भेजिए। माता को सावधान होना चाहिए कि छोटे बालक के दिमाग को सांचे में ढलने के लिए किसी अन्य हाथों में न सौंपे। माता पिता को जब तक बालक 8 या 10 वर्ष की आयु तक न पहुंचे स्वयं पढ़ाना चाहिए। उनको पाठ्य कक्ष, फूलों और चिड़ियों के बीच, खुली हवा और उनकी पाठ्य पुस्तक प्रकृति का खजाना होना चाहिए। ज्यों ही उनका मस्तिष्क ग्रहण करने योग्य हो सके, माता पिता को उनके आगे परमेश्वर की प्रकृति की विशाल पुस्तक खोल देनी चाहिए। ऐसे वातावरण में दिए गए पाठ शीघ्र भूले नहीं जा सकते। बालकों को बहुत छोटी अवस्था में स्कूल भेजने से न केवल उनका शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य ही संकट में पड़ जाता है, परंतु वे नैतिक दृष्टिकोण से भी हानि उठाते हैं। उनको ऐसे बालकों से परिचय होने का अवसर मिलता है जो शिष्टाचार में बिल्कुल असभ्य हैं। वे असभ्यों और गवारों की संगत में पड़े होते हैं, जो झूठ बोलते हैं, गाली बकते, चोरी करते और धोखा देते हैं, जो अपने अपराध विषय ज्ञान को अपने से छोटों को पहुंचाने में प्रसन्न होते हैं। छोटे बालकों को यदि उनकी इच्छा पर छोड़ दिया तो भलाई की अपेक्षा बुराई को शीघ्र ग्रहण करते हैं। प्राकृतिक हृदय के संग बुरी आदतें खूब मेल खाती हैं और जिन बातों को वे बचपन और बालकपन में देखते तथा सुनते हैं उनका उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
और वह बुरा बीज जो उनके कोमल हृदयों में बोया जाता है जड़ पकड़कर तीक्ष्ण कांटे बन जाते हैं, जिनसे उनके माता पिता को आघात पहुंचता है। व्यवहारिक जीवन के कर्तव्यों में शिक्षण का महत्व। जिस प्रकार इज़राइल के दिनों में, उसी प्रकार आज भी प्रत्येक युवक को व्यवहारिक जीवन के कर्तव्यों में शिक्षण की आवश्यकता है। प्रत्येक को कोई दस्तकारी या शिल्पकारी की कला का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे यदि आवश्यकता पड़े तो वो आजीविका कमा सके। ये न केवल जीवन के उलटफेर में संरक्षकता के लिए ही जरूरी है, परंतु उसका शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारी पाठशालाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के उद्योगों का इंतजाम करना चाहिए। उद्योग संबंधी शिक्षण में हिसाब किताब रखना, बढ़ई का काम और कृषि विद्या विषयक संपूर्ण कार्य सम्मिलित है। लोहार का काम, रंगसाजी, मोची का काम, रसोई बनाने, रोटी पकाने, कपड़ा धोने, मरम्मत करने, टाइप करने तथा छापने के काम सिखलाने की तैयारियां होनी चाहिए। हमारे अधिकार में जो भी शक्ति हो उसको शिक्षण करना चाहिए, ताकि विद्यार्थीगण व्यावहारिक जीवन के कर्तव्यों के लिए पूर्ण रीति से तैयार होकर निकलें। युवतियों के लिए अनेक उद्योगों को प्रदान करना चाहिए, ताकि वे भी विस्तृत और व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। उनको वस्त्र बनाना और फुलवाड़ी का काम सिखलाना चाहिए। फूलों और स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाने चाहिए। इस प्रकार जब वे लाभदायक परिश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, तो उनको खुले में स्वास्थ्यप्रद व्यायाम भी मिलेगा। मस्तिष्क का देह के ऊपर और देह का बुद्धि के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव पर विशेष जोर देना चाहिए। बुद्धि की विद्युत शक्ति, जिसकी मानसिक सक्रियता द्वारा उन्नति होती है, संपूर्ण शरीर रचना को जीवन प्रदान करती है। यूं रोग का प्रतिरोध करने में अनमोल सहारा सिद्ध होती है। धर्म पुस्तक में एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सत्य है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। मन का आनंद अच्छी औषधि। बालकों और युवकों को स्वास्थ्य, आनंदमय स्थिति, प्रफुल्लता तथा सुडौल मांसपेशी व बुद्धि प्राप्ति के लिए अधिकतर खुली हवा में रहना चाहिए और सुव्यवस्थित उद्यम तथा मन बहलाव में व्यस्त रहना चाहिए। जो बालक तथा युवक पाठशाला में पुस्तकों से ही सीमित हैं, उनका शारीरिक गठन स्वस्थ नहीं हो सकता। सपरिश्रम पुस्तकावलोकन के साथ साथ यदि उसी अनुपात में शारीरिक व्यायाम न किया जाए तो रक्त मस्तिष्क में संचय हो जाने की संभावना रहती है। इस प्रकार शरीर रक्ताभिसरण असंतुलित हो जाता है। मस्तिष्क में अत्यधिक रक्त संचय हो जाने के कारण अंतिम छोरों में उसकी बहुत कम मात्रा रह जाती है। बालकों और युवकों को पढ़ाई को कुछ घंटों तक नियमित करने के लिए नियम होने चाहिए, फिर उनके समय का कुछ अंश शारीरिक परिश्रम में व्यतीत होना चाहिए, और यदि उनके खाने, कपड़ा पहनने और सोने की आदतें शारीरिक नियम के अनुकूल हैं तो उनको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की हानि उठाए बिना शिक्षण प्राप्त हो सकती है। परिश्रम में गौरव। शारीरिक परिश्रम को महत्व देने की ओर युवक का मार्गदर्शन करना चाहिए। उनको बतलाए कि परमेश्वर निरंतर कार्य करते रहता है। प्रकृति की सारी चीजें अपने नियुक्त कार्य को करती हैं, सारी कार्यस्थ हैं, और अपने कार्य को पूरा करने के निमित्त हमें भी कार्यशील रहना चाहिए। उपयोगिता के लिए जब शारीरिक परिश्रम मानसिक व्यस्तता से सम्मिलित किया जाता है तो यह व्यवहारिक जीवन के लिए एक अनुशासन सा बन जाता है, और सर्वदा इस विचार से और भी मधुर हो जाता है कि इसके द्वारा मस्तिष्क और देह उस काम के लिए उत्तम रीति से योग्य और शिक्षित बन जाते हैं जिसे परमेश्वर चाहता है कि लोग विभिन्न शाखाओं में करें। हम में से किसी को काम करने से शर्माना नहीं चाहिए। काम कितना ही छोटा और नीच क्यों ना दिखाई दे, परिश्रम से प्रतिष्ठा होती है। जो मस्तिष्क से अथवा हाथों से काम करते हैं, वे ही काम करने वाले स्त्री पुरुष होते हैं। जब जो कपड़ा धोते अथवा देगचियां साफ करते हैं, वे वहां पर अपने कर्तव्य का ऐसा ही पालन करते हैं तथा अपने कर्म का ऐसा ही सम्मान करते हैं जैसे वे उपासना भवन में जाकर करते हैं। जब हाथ मामूली काम में व्यस्त हैं तो हो सकता है कि उस समय मस्तिष्क पवित्र विचारों से शुद्ध और समुन्नत हो।
शारीरिक परिश्रम को तुच्छ दृष्टि से देखने का एक बड़ा कारण ये है कि काम अक्सर असावधानी और बिना सोच समझ से किया जाता है, उसको लाचारी से किया जाता है, ना कि खुशी से। करने वाला उसको जी जान से नहीं करता, ना तो आत्मसम्मान की रक्षा करता है, और ना औरों की दृष्टि में उसका कोई आदर ही होना है। शारीरिक प्रशिक्षण द्वारा ये भूल ठीक होनी चाहिए। इससे यथार्थता और पूर्णता की आदतों का विकास होता है। विद्यार्थियों को चातुर्य तथा नियम व्यवस्था सीखना चाहिए। उनको बड़ी सावधानी से खर्च करना और प्रत्येक प्रगति लाभदायक होना चाहिए। उनको केवल कार्य की उत्तम पद्धति ही न सिखलाना चाहिए, परंतु उन्हें निरंतर उन्नति करने की आकांक्षा से प्रेरित होना चाहिए। उनका लक्ष्य ये हो कि जहां तक मानव बुद्धि और हाथ कर सकें, उनका किया काम निर्दोष व त्रुटि रहित हो। बालकों को आलस्य में बढ़ने देना पाप है। उन्हें अपनी भुजाओं तथा मांसपेशियों से कसरत करने दीजिए। चिंता नहीं यदि वे थक भी जाएं। यदि उनसे अत्यधिक काम न लिया जाए तो थकावट से उनको कैसे आपसे अधिक हानि पहुंच सकती है। स्वास्थ्यकर थकावट और शक्ति हानि। थकावट में बड़ा अंतर है, और बालकों के काम में बड़ों की अपेक्षा बार बार परिवर्तन और विश्राम का समय होना अवश्य है। परंतु जब वे अभी नन्हे बालक ही हैं, वे काम करना सीख सकते हैं, और जब वे देखेंगे कि अपने को उपयुक्त बना सकते हैं तो आनंदित होंगे। स्वास्थ्यप्रद परिश्रम के बाद उनकी नींद मधुर होगी और उसमें अगले दिन के काम करने के लिए ताजगी आ जाएगी। मातृभाषा की उपेक्षा न हो। शिक्षा की प्रत्येक शाखा में कुछ ऐसे भी उद्देश्य हैं जो केवल औद्योगिक ज्ञान प्राप्त करने से अधिक महत्व रखते हैं। उदाहरणार्थ, मातृभाषा विदेशी भाषा को, चाहे वह प्रचलित हो या अप्रचलित, प्राप्त करने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि प्रत्येक अपनी मातृभाषा को सुगमता और शुद्धता के साथ बोल तथा लिख सके। परंतु उच्च दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई भी शिक्षण जो व्याकरणीय नियमों के ज्ञान द्वारा प्राप्त किया जाता है, मातृभाषा के अध्ययन से ज्यादा जरूरी नहीं है। मातृभाषा के अध्ययन के साथ अधिकांश रूप में जीवन के सुख और दुख बंधे हुए हैं। परमेश्वर नास्तिकों की कृतियों को अस्वीकार करता है। क्या परमेश्वर का यह उद्देश्य है कि असत्य सिद्धांत, झूठे तर्क वितर्क तथा शैतान के मिथ्यावादनुवाद बालकों तथा युवकों के मस्तिष्क के सामने रखे जाएं? क्या मूर्ति पूजकों तथा नास्तिकों के मत हमारे विद्यार्थियों के सामने रखे जाएं, मानी कि वे उनके ज्ञानकोश में बहुमूल्य योग हैं? सबसे बुद्धिमान नास्तिक की कृतियां ऐसी बुद्धि की रचता है जो शत्रु की सेना के लिए घृणित कार्य में संलग्न है। तो सोचिए, जो अपने को धर्म सुधारक कहते हैं, जो बालकों और युवकों को इस सच्चे मार्ग में, जो परमेश्वर के छुड़ाए हुओं के लिए तैयार किया गया है, ले जाने की चेष्टा करते हैं। परमेश्वर उनको बालकों के अध्ययन के लिए ऐसी पुस्तकें प्रस्तुत करने देगा जिनमें स्वयं उसके चरित्र का मिथ्या वर्णन हुआ है, और उसको झूठे प्रकाश में पेश करे। परमेश्वर ऐसा ना करे। मसीही शिक्षा का परिणाम।
जिस प्रकार बालकों ने मंदिर के आंगन में चिल्लाकर गाया था, जय जय धन्य वहो जो परमेश्वर के नाम से आता है, मरकुस 11 आयत 9, उसी प्रकार बालकों की आवाजें इन अंतिम दिनों में भी नाशमान जगत को चेतावनी के संदेश देने के लिए उठेगी। जब स्वर्गीय प्राणी देखेंगे कि पुरुषों को सत्य के प्रचार करने की आज्ञा नहीं रही, तो परमेश्वर का आत्मा बालकों पर उतरेगी और वे सत्य प्रचार का कार्य करेंगे जिसको बड़ी उम्र के लोग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनका मार्ग बंद हो गया। हमारे चर्च स्कूलों का संस्थापन परमेश्वर की ओर से हुआ है कि बालक इस भारी काम के लिए तैयार किए जाएं, जहां बालकों को इस समय के लिए विशेष सत्यों के संबंध में और व्यावहारिक धार्मिक कार्य के संबंध में शिक्षा दी जावे। उन्हें कर्मचारियों की सेना में भर्ती होना चाहिए, जिससे बीमारों और दीन दुखियों की सहायता हो। बालक धार्मिक स्वास्थ्य संबंधी कार्य में भाग ले सकते हैं और अपनी छोटी छोटी रकमों और कर्मों से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। उनकी रकम छोटी क्यों ना हो, परंतु बूंद बूंद से घड़ा भरता है और उनकी मेहनतों से बहुत सी आत्माएं सत्य के लिए जीती जाएंगी। उनके द्वारा परमेश्वर का संदेश और उसका स्वास्थ्य रक्षक संदेश राष्ट्रों को पहुंचाया जा सकता है।
तब तो मंडली को झुंड के मेमनों का दायित्व उठाना चाहिए। बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए कि परमेश्वर की सेवा करें, क्योंकि वे परमेश्वर की मीरास हैं।
जिन स्थानों में हमारे चर्च स्कूल स्थापित हैं, यदि वे सुव्यवस्थित रूप में चलाए जाए तो सत्य के स्तर को ऊंचा करने में वे एक अच्छे साधन सिद्ध होंगे, क्योंकि जो बालक मसीही तालीम पा रहे हैं वे मसीही के लिए गवाह होंगे।
जिस भांति यीशु ने उन रहस्यों को हल किया जो याजकों और सरदारों के कभी ध्यान में भी ना आए थे, इसी प्रकार इस पृथ्वी के अंतिम कार्य के समय जिन बालकों की यथोचित शिक्षा हुई है, वे अपनी सरल भाषा में ऐसी ऐसी बातें कहेंगे जो उन लोगों को जो इस समय उच्च शिक्षा का वर्णन करते हैं आश्चर्यचकित कर देंगे।
मुझे दिखलाया गया कि परमेश्वर ने हमारा कॉलेज आत्माओं को बचाने के लिए स्थापन किया।
जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के पूर्ण नियंत्रण में लाया जाता है, तभी उसकी योग्यता पूर्ण रूप से सफल होती है। धार्मिक सिद्धांत ज्ञान प्राप्ति में महिमा पग हैं, जो सच्ची शिक्षा की बुनियाद है। सर्वोत्तम उद्देश्य प्राप्ति के लिए ज्ञान और विज्ञान दोनों परमेश्वर की आत्मा द्वारा अनुप्राणित किया जाना चाहिए। केवल मसीही पुरुष ज्ञान का यथोचित उपयोग कर सकता है। यदि विज्ञान का मूल्य रीति से पहचाना हो तो उसको धार्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा जिसका हृदय उन्नत किया गया है, वही शिक्षा का असली मूल्य समझ सकता है। परमेश्वर के गुणों की जो उसकी सृजित वस्तुओं में प्रकट है, उसी समय कद्र की जा सकती है जब हमें सृष्टिकर्ता का ज्ञान हो। युवकों को सत्य के स्रोत परमेश्वर के मेमने के पास, जो जगत के पाप उठा लेता है, ले जाने के अभिप्राय से अध्यापकों को केवल सत्य के सिद्धांत ही से जानकारी नहीं होनी चाहिए, अपितु पवित्रता के मार्ग के प्रति व्यवहारिक ज्ञान होना जरूरी है। जब ज्ञान वास्तविक ईश्वर भक्ति से संयुक्त होता है तो एक शक्ति बन जाती है। अपने स्कूल का समर्थन करने में विद्यार्थी का दायित्व।
जो विद्यार्थी परमेश्वर से प्रेम रखते और सत्य का पालन करते हैं, उनमें आत्मनियंत्रण और धार्मिक सिद्धांत की शक्ति उस हद तक होनी चाहिए जो उन्हें प्रलोभन के बीच अडिग और मसीह के लिए कॉलेज में अथवा छात्रावास में या जहां कहीं वे हों स्थिर रखेगी।
धर्म को आराधनालय में आवरण स्वरूप नहीं पहनना चाहिए, अपितु धार्मिक सिद्धांत का चित्रण संपूर्ण जीवन में होना चाहिए। जो जीवन के स्रोत से जल पी रहे हैं, वे दुनियादार की तरह परिवर्तन और भोग विलास की तीव्र अभिलाषा प्रकट नहीं करेंगे। उनके चरित्र में वो विश्राम, शांति तथा सुख पाया जाएगा जिसे उन्होंने रोजाना अपने संकटों और भारों को यीशु के चरणों में रखकर प्राप्त किया है। वे प्रदर्शन करेंगे कि कर्तव्य पालन और आज्ञा पालन के पथ में संतुष्टता और आनंद प्राप्त होता है। ऐसे विद्यार्थियों का उनके सहपाठियों पर ऐसा अमिट प्रभाव पड़ेगा जो समस्त स्कूल पर विद्यमान होगा। जो इस विश्वस्त सेना में शामिल हैं, वे हर प्रकार की अविश्वस्तता, विरोध तथा अवहेलना को निरुत्साह करके कानून तथा नियमों की पाबंदी करने में शिक्षकों तथा प्राध्यापकों की कोशिशों को ताज़ा और बलवंत करेंगे। उनका प्रभाव बचाने वाला प्रभाव होगा। उनके काम परमेश्वर के महान दिन में नष्ट न होंगे, परंतु भावी जगत तक उनके संग हो लेंगे और उनके इस जीवन का प्रभाव युगानुयुग तक रहेगा।
स्कूल में एक ही उत्साही, सदाचारी, विश्वसनीय युवक एक अनमोल खजाना है। स्वर्गीय दूत उनको प्रेम दृष्टि से देखते हैं। उसका प्यारा त्राणकर्ता उससे प्रेम रखता है और स्वर्गीय बही में धार्मिकता के प्रत्येक कार्य का, प्रत्येक प्रतिरोध किए गए प्रलोभन का, प्रत्येक परास्त की हुई बुराई का उल्लेख किया जाएगा। इस प्रकार वह आने वाले समय के लिए मजबूत नींव डाल रहा है, जिससे वह अनंत जीवन का भागी हो सके।
मसीही जवानों के ऊपर हमारी इन संस्थाओं का संरक्षण तथा चिर स्थायित्व निर्भर है, जिन्हें परमेश्वर ने अपने काम को फैलाने के लिए स्थापित किया है। वह गंभीर दायित्व हमारे समय के युवकों के ऊपर है जो कार्य मंच पर आ रहे हों। इतिहास में कोई ऐसा समय नहीं था जब ऐसे महत्वपूर्ण परिणामों का किसी एक पीढ़ी के ऊपर आश्रय रहा हो जैसे अब की। तब कितना जरूरी है कि युवक उस भारी काम ठेके योग्य बने जिससे परमेश्वर उन्हें साधन स्वरूप प्रयोग कर सके। सृजनहार का उनके ऊपर सर्वश्रेष्ठ अधिकार है।
परमेश्वर ही है जिसने उन्हें जीवन और प्रत्येक शारीरिक व मानसिक देन दिया है। उसने उन्हें बुद्धिमानी के साथ समुन्नत करने के लिए योग्यताएं प्रदान की हैं, ताकि उनको वह काम सौंपा जा सके जो अनंतता के समान चिरस्थाई रहेगा। अपनी महान देनों के बदले में वह उनकी ओर से मानसिक और नैतिक शक्तियों को उचित उन्नत तथा अभ्यास की मांग करता। उसने उन्हें ये शक्तियां केवल उनके मन बहलाव के लिए अथवा उसकी इच्छा के प्रतिकूल प्रयोग में लाने के लिए नहीं दी हैं, परंतु इसलिए दी हैं कि वे उनको संसार में सत्य और पवित्रता के ज्ञान को बढ़ाने में प्रयोग करें। परमेश्वर अपनी निरंतर कृपाओं तथा असीम दयाओं के बदले उनसे धन्यवाद, आराधना और प्रेम की मांग करता है। वह न्यायपूर्वक अपनी व्यवस्थाओं और सारे बुद्धिमानी से बनाए गए नियमों की आज्ञाकारिता चाहता है, जिनसे युवकों की शैतान की युक्तियों से रोकथाम और रखवाली होगी और उनकी शांति मार्ग की ओर अग्रसरी की जाएगी।
यदि युवक यह देख सकें कि हमारी पाठशालाओं के नियमों की पाबंदी करने में वे केवल वह कार्य कर रहे हैं जिनसे समाज में उनकी स्थिति समुन्नत होगी, चरित्र का उत्थान होगा, बुद्धि समृद्ध होगी और उनके सुख को बढ़ाएगी, तो वे उचित और दुरुस्त कानून का विरोध न करेंगे, न वे इन शालाओं के विरुद्ध पक्षपात व संदेह पैदा करने में भाग नहीं लेंगे। हमारे युवकों में पौरुषत्व और विश्वस्तता की भावना होनी चाहिए कि वे अपने ऊपर की मांगों को पूरी कर सकें। इससे सफलता निश्चित रूप में होगी। संसार में इस युग में बहुत से जवानों का असभ्य और लापरवाह चरित्र हृदय विदारक है। अधिकतर इस बात का श्रेय माता पिता के ऊपर है। परमेश्वर के भय के बिना कोई यथार्थतः सुखी नहीं रह सकता।